आप भाग देना चाहते हैं, तो भरत महाराज आ रहे हैं, धर्म धुरीन हैं, वे तो धर्म के धुर को पकड़े हुए हैं, आप उनको वह भाग दे सकते हैं। मानो बारंबार लक्ष्मण जी उसी बात को दोहराना चाहते हैं और फिर वे कह देते हैं, गुरु पितु मातु न जानो काहू नाथ स्वभाव। वो कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, स्वभाव से कहता हूँ कि आप मेरी इस बात को पटिया लें, मान लें कि मैं न तो गुरु को जानता हूँ, न माता को जानता हूँ, न अन्य भाई को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, केवल आपको जानता हूँ। मोरे सभी नाथ एक तुम्हारे, मैं आप एकमात्र एक मेरे ही हैं। मोरे सभी नाथ तुम मोरे, आप ही एकमात्र मेरे अपने हैं, मैं और दूसरे को नहीं जानता हूँ। ऐसा कहते हैं और फिर उसके बाद कहेंगे कि नाथ यदि आप ही मुझे छोड़ दें। नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजई, कहते हैं यदि आप मेरा त्याग कर दें तो मैं क्या, मेरा बस चल सकता है, आप मुझे छोड़ दे सकते हैं, परंतु मैं एक बात कह दूं, आपने घोषणा की है, ईश्वर ने कहा है कि जो मेरी शरण आता है तो उसका मैं त्याग नहीं करता हूं, तो आप यह देख लीजिए, यदि मैं अपने को आपकी शरण में डाल रहा हूं और आप मुझे यहां पर छोड़ करके चले जाएं, तो आपने पहले जो कहा है वह बात कटती है या नहीं कटती है, इस पर आप स्वयं विचार कर लें। लक्ष्मण जी ने कहा, अब क्या कहेंगे भगवान श्री राम इस पर और क्या कहेंगे, वे साथ में चलने के लिए कहते हैं। तो यह जो मैं कह रहा था कि लक्ष्मण जी अनिवार्यतः मानो प्रभु के साथ चलने वाले, दोनों मिलकर के पूर्णता साधित करते हैं, लक्ष्मण जी साथ में न रहें, प्रभु का कार्य संपन्न न हो। और भरत जी कैसे हैं, भरत जी अत्यंत प्रेम करते हैं, समर्पित हैं श्री राम के प्रति, परंतु प्रभु को भरत जी से संकोच है, प्रभु को हनुमान जी से संकोच है, यह हम देखते हैं। प्रभु के मन में भरत जी और हनुमान जी के प्रति आदर का भाव है, स्नेह का भाव है, पर हम देखते हैं उतना अपनत्व का भाव नहीं दिखाई देता जितना अपनत्व का भाव लक्ष्मण जी के प्रति है। लक्ष्मण जी की सन्निधि में प्रभु मानो बिल्कुल किसी प्रकार उनके मन में जिसको कहेंगे कि कोई ऐसा भाव नहीं कि लक्ष्मण जी के प्रति मुझे यह करना है या वह करना है, उन्हें कोई संकोच नहीं होता है लक्ष्मण जी की उपस्थिति में, परंतु भरत की उपस्थिति में। वे तो कहते हैं राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, भरत जी से कह रहे हैं, राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहरे प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत मन सोचु तहिते अधिक तुम्हार सकोचु। भरत, पिताजी ने सत्य के लिए मुझे त्याग दिया और प्रेम के लिए अपने शरीर को छोड़ दिया, उनके वचन को मेटते मुझे बहुत संकोच होता है और उससे भी अधिक संकोच मुझे तुम्हारा होता है, माने प्रभु को भरत जी से संकोच होता है और हनुमान जी से, हनुमान जी के प्रति भी प्रभु के मन में संकोच की भावना है। और वे कह उठते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा सनमुख होई न सकत मन मोरा। जब आ गए हनुमान जी लंका जी से, सीता जी का संदेशा लेकर के प्रभु को सब सुना दिया, प्रभु इतने गदगद हो गए, गदगद होकर के कहते हैं कि कपि, मैं तुम्हारे इस ऋण से दब गया हूं, इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता, तुम्हारा मैं क्या प्रत्युपकार करूं। मानो प्रभु ऋण से दबने की कल्पना करते हैं, हनुमान जी के ऋण से दब गए हैं, वे धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, भरत जी के प्रति उनके मन में संकोच का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, पर लक्ष्मण जी के प्रति कभी नहीं। अगर भरत जी ने किया तो प्रभु को लगेगा कि मैं उठकर के गले से लगा लूं, यदि हनुमान जी ने प्रणाम किया तो प्रभु को लगेगा कि मैं आशीष दे दूं, ठीक ढंग से बात करूं हनुमान जी से, पर लक्ष्मण जी के साथ लक्ष्मण जी प्रणाम करें तो भी प्रभु को कोई चिंता नहीं, ना आशीर्वाद देने की, ना उठकर के गले लगने की, चाहे लक्ष्मण जी बैठे रहें चाहे खड़े रहें, प्रभु जी किसी प्रकार का संकोच लक्ष्मण जी के सामने नहीं करते, ऐसा विलक्षण चरित्र लक्ष्मण जी का आता है जो प्रभु के बिल्कुल अपने हों। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे कल पहले दिन वंदना में हमने पढ़ा था, ये कैसे हैं भरत जी, कैसे हैं राम चरण पंकज मन जासु लुगुद मधुप इव तजैन पासु। भरत जी ऐसे हैं भ्रमर के समान, राम चरण रूपी पंकज के लिए भ्रमर के समान है, ये लुब्ध मधुप हैं और प्रभु के चरण कमलों को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते हैं। यह उपमा दी है। इसका मतलब क्या हुआ? कमल सुंदर है और उस पर भौरा मंडरा रहा है। अगर भौरा न भी हो, भ्रमर न भी हो, तो कमल के सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। पर लक्ष्मण जी ना हो तो कहते हैं लक्ष्मण जी कौन? वही रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। राम कीर्ति रूपी, राम विमल कीर्ति रूपी पताका के लिए लक्ष्मण जी दंड हैं। दंड के बिना आप पताका की कल्पना कर ही नहीं सकते। दंड ना हो तो पताका फहरा ही नहीं सकती, भ्रमर ना हो तो कमल का सौंदर्य उससे म्लान नहीं होता। पर यदि दंड ना हो तो पताका का सौंदर्य ही नहीं है, और इसीलिए लक्ष्मण जी का साथ श्री राम के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह बात पग पग पर कहते भूलते नहीं हैं गोस्वामी जी, इसी को ध्वनित करते रहते हैं कि लक्ष्मण जी का साथ इतना आवश्यक क्यों है। ऐसे ये लक्ष्मण जी हैं जो प्रभु की हर क्रिया में साथ बने रहते हैं, हर क्रिया में साथ, चाहे वह कोई भी क्रिया हो, चाहे वह कोई भी रस हो, हर रस में ये लक्ष्मण जी साथ में बने हुए हैं। चाहे वह श्रृंगार रस हो, चाहे वह वीर रस हो, चाहे वह शांत रस हो, लक्ष्मण जी अगर चाहे शिष्य बनना शिष्य बन जाते हैं, जब देखते हैं प्रयोजन है पुत्र बनना पुत्र बन जाते हैं, जब देखते हैं प्रयोजन सखा बनना सखा बन जाते हैं, भाई बनने का प्रयोजन है भाई बन जाते हैं। अद्भुत है, विलक्षण है, यह खूबी लक्ष्मण जी में ही है। और हम ऐसा मानते हैं लक्ष्मण जी तो बड़े मुंहपट हैं, बहुत बोलते हैं, परंतु जहां पर आवश्यकता नहीं होती वहां पर वे मौन भी रहते हैं। यह भी कुशलता लक्ष्मण जी में हमें दिखाई देने मिलती है। तो जैसे हम गीतावली रामायण में पढ़ते हैं, लक्ष्मण जी और इन दोनों का संबंध क्या है? प्रभु श्री राम जगत जननी सीता जी जैसे वन मार्ग से जा रहे हैं, तो वहां पर मानो हमारे समक्ष एक सुंदर चित्रण करते हैं। कहते हैं गीतावली रामायण में, रामचंद्र कर कंज कामतरु बामदेव हितकारी, सिय स्नेह बर बलित बेली तरु प्रेम बंधु बरबारी। यह जो यहाँ पर कहा गया कि ये कौन है, रामचंद्र कर कंज कल्प कामतरु बामदेव हितकारी और सिय स्नेह बर बलित बेली तरु प्रेम बंधु बरबारी। बहुत सुंदर उपमा यहाँ पर गोस्वामी जी ने दी, और कितनी सार्थक उपमा है। ये कौन है? श्री राम है वृक्ष के समान, ये कामतरु हैं, और सीता जी कैसी हैं? इस कामतरु में लिपटी हुई बेल है, मानो ये बेल दोनों एक दूसरे के पाकर के धन्यता का अनुभव करने वाले। जैसे यह वृक्ष है और वृक्ष के पत्तों में जो छिद्र है उन छिद्रों को ढकने वाली यह बेल, बेल शोभा का विस्तार करने वाली, और यह जो बेल है उसके लिए यह वृक्ष ही तो है। यह वृक्ष जो हर समय वहां पर विद्यमान है बेल को मानो सहारा देने के लिए। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? कहते हैं ये बाढ़ के समान है, और बाढ़ जितनी कटीली हो उतनी अच्छी है। ये तो आप जानते हैं कि बाढ़ कटीली होगी तो वह वृक्ष और बेल की रक्षा करेगी, और यदि बाढ़ ना हो तो पशु आकर के वृक्ष को चर जाए, बेल को चर जाए। तो गोस्वामी जी की कल्पना कितनी सार्थक है। कहते हैं लक्ष्मण जी कैसे हैं? प्रेम बंधु बरबारी, वे बाढ़ के समान हैं, और बाढ़ के समान होकर के श्री राम और श्री सीता जी की रक्षा करते हैं। और जैसा मैंने अभी कहा, बाढ़ जितनी कटीली हो उतनी ही बाढ़ की शोभा है, इसीलिए यदि लक्ष्मण जी का कांटा कुछ चुभता भी है तो उसे हमें कांटे के रूप में नहीं लेना चाहिए, उसे लेना चाहिए मानो प्रभु की रक्षा के लिए वे बाढ़ बन करके आते हैं, सीता जी की रक्षा के लिए वे बाढ़ बन करके आते हैं। यह हमें दिखाई देता है लक्ष्मण जी के चरित्र के माध्यम से। अब लक्ष्मण जी हर समय साथी, जैसा मैंने कहा प्रभु की लीला में हर समय साथी। जब ऐसा लगे कि प्रभु में गुरुभाव आया है तो लक्ष्मण जी शिष्य भाव ग्रहण करते हैं, शिष्य के समान पूछते हैं। अरण्यकांड में प्रसंग आता है जहां पर वे पूछ रहे हैं, कहते हैं कि कहते हैं प्रभु कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सुभगति करहूं जही दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सब ही कहूं समझाई जाते चल। कह रहे हैं ईश्वर जीव भेद प्रभु, यह भी समझाइए। कहते हैं कहो ज्ञान विराग अरु माया, आप ज्ञान वैराग्य और माया को समझा करके बताइए। जैसे शिष्य प्रश्न पूछ रहा हो, केनोपनिषद में पढ़ते हैं ना, केनोपनिषद तो प्रश्न से ही शुरू होता है कि शिष्य के प्रश्न से, जहां पर यही पूछा गया केनेषितम केनेषितम प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेतयुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देयो युनक्ति, जैसे प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं, कहो ज्ञान विराग अरु माया और कहूं सो भगति करहूं जही दाया, वह भक्ति तो बताइए। जिस भक्ति के वश में होकर के आप दया करते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सबहि कहूं समझाए, आप ईश्वर और जीव का भेद बताइए। और फिर उसके बाद कहते हैं कि वह आप वह भी बताइए जिससे चरणों में रति हो, शोक मोह भ्रम जाए, जिसे शोक दूर हो मोह दूर हो भ्रम दूर हो, यह आप बताइए। यह भी एक लीला है, यह भी लक्ष्मण जी के चरित्र के एक पक्ष है। यह मानो जिस समय शांत रस में प्रभु बैठे हैं तो शांत रस में भी भागी हैं लक्ष्मण जी, यह हम देखते हैं। अब आगे चलें, आगे चलें तो विनोद और हंसी का रस आता है, शूर्पणखा का प्रसंग आता है। तो प्रभु का संकेत पाकर के लक्ष्मण जी उसी प्रकार की भूमिका अपनाते हैं, यही विलक्षणता है। जहां पर कहा गया सूपनखा रावण कह बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी गई सोई एक बारा देखी विकल भई ब्रह्म जुगल कुमारा, गई पंचवटी में दोनों कुमारों को देखती है, विकल हो गई, उसके भीतर में वासना उभर आती है और आकर के वह श्री राम से कहती है तुम सन पुरुष न मोसम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी मम अनुरूप पुरुष जग माही खोजे, कह रही है मैंने तीनों लोगों को मैंने खोज करके देख लिया, खोजे लोक सब जगह जा करके देख लिया लोक तिहु नाही, ऐसा तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान नारी मैं तो कहीं है नहीं। यह अद्भुत संजोग है, मैं अपने लिए पुरुष खोजने के लिए गई, तीनों लोकों में मुझे कोई अपने लायक पुरुष नहीं मिला और यहाँ पर अभी जब आई तुम्हें देख करके कहती है कि मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुमको देख करके थोड़ा मेरा मन ठीक है अच्छा लगा, हाँ तुम मेरे कुछ अनुकूल हो, बड़ी विलक्षण बात है। तब जब प्रभु से प्रस्ताव करती है तो प्रभु क्या करते सीतई चितई कहो प्रभु बाता, सीता जी की तरफ देखते हैं प्रभु और कहते हैं बात करते हैं, माने वे पहले देखते नहीं हैं शूर्पणखा की ओर, शूर्पणखा प्रभु से बात कर रही है, प्रभु से कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी, और फिर कह रही है कि मैं बहुत खो जाई, अब तुमको जो देखा है तो थोड़ा मेरा मन माना है तुम मेरे कुछ लायक हो। तो प्रभु कहाँ देखते हैं, उत्तर देते हैं शूर्पणखा को, पर देखते हैं सीता जी को, सीता जी की ओर देख करके कहते हैं सीता ही चितई कही प्रभु बाता अहे कुमार मोर लग भ्राता, कहा था ना उसने ताते अब लग रहे हूं कुमारी, इसीलिए मैं अब तक कुमारी ही रही, मैंने विवाह नहीं किया और इसलिए मैं आई हूं तुम्हारे पास, तुम मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो। तो प्रभु सीता जी की ओर देखते हैं तो एक अर्थ यह है कि देखो तुम कुमारी हो पर मैं तो कुमार नहीं हूं, मेरे साथ यह पत्नी है। और दूसरे फिर कहते हैं अहे कुमार मोर लग भ्राता, यह कुमार मेरा छोटा भाई है, यह कुमार है। कोई कोई कहते हैं कि यह प्रभु ने ठीक है विनोद में ही सही, ऐसा कैसे मिथ्या भाषण किया, वे तो जानते हैं कि लक्ष्मण जी तो विवाहित हैं, जानते हुए भी उन्होंने कैसे कह दिया कि यह कुमार है। तो देखिए हंसी विनोद चल रहा है और वहां पर शूर्पणखा जिस भाषा में बात करती है प्रभु भी उसी भाषा में बात करते हैं, तभी शायद शूर्पणखा समझ पाएगी आप जिस भाषा में मुझसे बात करें, अगर मैं उस भाषा में आपसे न बात करूं और मैं अपनी भाषा में बोलूं बहुत संभव है आप मुझे गलत समझें, मेरी बात को न समझें। तो प्रभु ने देखा कि शूर्पणखा की अपनी एक भाषा है, जिस भाषा में वह अपने को कुमारी कहती है, वह है विवाहिता, उसके पति हैं, सब कुछ है, फिर भी कह रही है कि मैं ताते अबलग रह हूं कुमारी, इसलिए मैं अभी तक कुमारी थी। तो प्रभु ने कहा कि शायद लंका की भाषा में तुम कुमारी हो, उसी भाषा में ये भी कुमार है, ठीक है, तुम जाओ, यह मेरा छोटा भाई है, तुम विवाह का प्रस्ताव ले जा सकती हो। तो गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, तो वह लक्ष्मण जी के पास जाती है प्रस्ताव लेकर के। अभी तक उसने कहा कि तुमको देख करके मेरा मन कुछ माना है, पर जहां प्रस्ताव उन्होंने माना नहीं, लक्ष्मण जी के पास गई। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, और ये और लक्ष्मण जी क्या थे, प्रभु बुलो की बोले मृदु वाणी। और लक्ष्मण जी उत्तर तो देते हैं शूर्पणखा को, पर देखते हैं प्रभु की, कि भक्ति की ओर देख करके, ठीक है एक वासना हमारे समक्ष आई है, हम देखते हैं भक्ति की ओर, वासना से बातचीत करते हैं, यह एक सार्थक तरीका है। लक्ष्मण जी हैं और वे देखते हैं प्रभु की ओर, तो वासना आई है प्रभु बिलो की, बोले मृदु वाणी। मृदु वाणी कहते हैं, अत्यंत नम्र वाणी से वे बातचीत करते हैं, पर वे देखते हैं भगवान की ओर, भगवान की ओर देखा लक्ष्मण जी ने, और कहते क्या है, सुंदरी सुन मैं उन्हें कर दासा। खूब प्रसन्न हो गई यह शूर्पणखा, कम से कम इसने तो सुंदरी मुझे कहा, वह तो बड़ा भाई, सुंदरी तक वह नहीं जानता, उसको सौंदर्य बोध ही नहीं है, मैं इतना देखो बन ठन करके आई हूँ, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, कम से कम इसने मेरी तरफ देखा है, तभी तो कहता है कि सुंदरी सुन इसमें है सौंदर्य बोध है, इसमें रस का बोध है, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, यदि मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार भी कर लूं तो तुम पराधीन हो जाओगी, तुम्हें कोई इसमें सुविधा नहीं मिलेगी, तुम्हें आनंद नहीं आएगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जाओ प्रभु के पास जाओ, यदि वे तुम्हें अपना लेते हैं तो उससे बढ़कर के सौभाग्य तुम्हारा और क्या होगा। और देख लिया लक्ष्मण जी ने कि प्रभु विनोद करना चाहते हैं, कौतुकी हैं प्रभु, कौतुक करना चाहते हैं, संकेत पकड़ लिया। जो ही प्रभु ने कहा अहे कुमार मोर लघु भ्राता, लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु विनोद का विस्तार करना चाहते हैं, बस जो ही विनोद के विस्तार में वे सहभागी हो गए, और वे कहते हैं ठीक है। भेजा गई शूर्पणखा उनके पास, भगवान श्री राम के पास। प्रभु फिर से कहते हैं कि देखो मेरे तो ये पत्नी है, वह तो अकेला है, जाओ तुम उसके पास चली जाओ। फिर से आई यहाँ पर, और जब आकर के लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम वहीं क्यों नहीं जाती, तुम पराधीन हो जाओगी, तो उसने कहा शूर्पणखा ने कि देखो वह तो कह रहा है कि उसके पत्नी है, तो क्या हो गया, पत्नी है प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अरे वे तो कौशलपुर के राजा है, समर्थ है राजा का मतलब, अरे हमारे पिता के तीन पत्नियां थी, इनके तो अभी एक ही है, तो इसलिए तुम्हें किसी प्रकार चिंता नहीं करनी चाहिए, जाओ वे समर्थ हैं, कौशलपुर राजा हैं, जो कछु करें तिनहिं सब छाजा, वे जो कुछ करेंगे उनको सब शोभा देता है, पर मुझे शोभा नहीं देता सुंदरी, तुम जाओ। फिर से जाती है, फिर से श्री राम लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, और यह जब क्रम का ये बात चला, तब हम पढ़ते हैं कि शूर्पणखा अपना वह रौद्र रूप प्रकट करती है, रौद्र रूप प्रकट किया, प्रभु ने संकेत किया, बस अभी तक जो हंसी और विनोद के रस में, हास्य रस में प्रभु के सहभागी हो रहे थे, बीभत्स रस में वे सहभागी होते हैं, एकदम तुरंत क्या करते हैं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, तुरंत निकाल करके प्रभु का संकेत समझ करके नाक कान काट लेते हैं, माने हर जगह कहीं कोई संकोच नहीं है, प्रभु का संकेत समझ लिया, प्रभु की जिससे रक्षा, प्रभु का यश जिससे बढ़े, ठीक है मैं ही तो अपयश का भागी बनूंगा, लोग मुझे ही तो कहेंगे यह लक्ष्मण एक नारी पर इस प्रकार हाथ चलाता है, ठीक है कहेंगे लोग, यह अपयश मैं सह लूंगा, पर प्रभु की रक्षा हो। जब शूर्पणखा ने अपना वह बीभत्स रूप प्रकट किया, सीता जी पर जब वह झपटती है सीता जी पर चोट करने के लिए, तो हम देखते हैं यह लक्ष्मण जी करते हैं हर समय साथ हैं, वैसे ही जैसे हमने कहा शांत रस में सहभागी, विनोद हास्य रस में सहभागी, बीभत्स रस में सहभागी, श्रृंगार रस में, वह तो प्रसंग ही है, अद्भुत प्रसंग है पुष्पवाटिका का, जहां पर प्रभु सुनते हैं केवल सीता जी के चरणों में जो आभूषण है, कर्धनी है, नूपुर है, कंकण है, इनकी ध्वनि सुनते हैं, उनके भीतर अनुराग का संचार हो जाता है, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि यह जो मदन है, यह कामदेव है, यह दुंदुभी बजाता हुआ आ रहा है कि मैं अब सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मनसा विश्व विजय कह की नहीं, उसने दुंदुभी पर चोट कर दी है और यह आ रहा है काम। ऐसा लगता है सीता जी के चरणों के जो आभूषण, करधनी, कंगन, हाथ, कमर और पैर, ये जो आभूषण है, आभूषणों की ध्वनि उनके भीतर में अनुराग का संचार करती है और वे श्रृंगार रस का कितना कवित्व वहां पर मानो फूट पड़ता है प्रभु के हृदय से वाणी का रूप लेकर के। और वे सुनाते हैं और लक्ष्मण जी बड़े सुंदर श्रोता है, कुछ नहीं कहते, सुनते रहते हैं। प्रभु को देखा अनुरागमान हो गए, अभी तो केवल ध्वनि सुनी है, यह बहुत विलक्षण है। रूप देख करके किसी के मन में किसी के प्रति लगाव हो जाए, यह बात तो सहज है, स्वाभाविक है, पर अभी रूप देखा नहीं, एक ध्वनि मात्र सुनी है, वह भी आभूषणों की ध्वनि, और उसके माध्यम से अनुराग उत्पन्न हो गया है, यह विलक्षणता है। और श्री राम जब देखते हैं सीता जी को, लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, क्या कहते हैं? तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। कितना अनुराग, कितना श्रृंगार। देखो तात, यही वह जनक तनिया है जिसके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसकी अलौकिक शोभा को देख करके जो मेरा मन सहज पवित्र है, शुद्ध हो रहा है, प्रभु ने अपने अनुराग को प्रकट कर दिया। लक्ष्मण जी कहीं पर एक शब्द तक नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि श्रृंगार रस में तीसरे की उपस्थिति बाधक है, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने को पूरी तरह से वहां पर अंतर्धान ही कर लिया है, मुंह ही कर लिया है, अपनी उपस्थिति का भान नहीं होने देते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, आप कैसे साहित्य के रस वाले हैं, जहां पर प्रभु के मन में श्रृंगार रस आया, सीता जी हैं, आपको दोनों को अकेले छोड़ देना था, या लक्ष्मण जी की उपस्थिति आप यह कैसी करा रहे हैं, यह तो ठीक नहीं है। तो बड़ा सार्थक संकेत गोस्वामी जी देते हैं, कहते हैं देखो तुम तो जानते हो साक्षात नारायण कहां रहते हैं, शेष शैया पर, वहां पर लक्ष्मी जी हैं, और यह शैया क्या है? श्रृंगार रस की साधक है शैया, पर श्रृंगार रस की भोक्ता शैया नहीं है। शैया के बिना श्रृंगार रस पुष्ट हो ही नहीं सकता, शैया चाहिए, पर शैया उसमें बाधक नहीं, साधक है, और इसीलिए वह शैया भोक्ता नहीं है, और इसीलिए ये भोक्ता नहीं है लक्ष्मण जी उस श्रृंगार रस के। सुनते हैं सब और क्या करते हैं? उसके अनुरूप प्रभु को सजा देते हैं, सजाते हैं, लता मंडप में ले गए। प्रभु को देख करके मयूर नाचने लगा था, वह जो मोर ने अपना पक्ष छोड़ दिया, वह वहां पर उस पक्ष को, पंख को उठाते हैं और सजाते हैं। कहा कि ठीक है, जब इस विरागी ब्रह्म में अनुराग आया है, जब इसके मन में सीता जी के प्रति इस प्रकार का अनुराग पैदा हुआ है, तो ठीक है यहीं पर इन दोनों का विवाह कर दिया जाए, भले ही वह मानसिक रूप से हो, मन में तो उठ ही गया है, अब दूल्हे को हम सजा दें। प्रभु आए थे पुष्प चयन करने के लिए, इसलिए मुकुट पहन करके नहीं आए थे। अब यहाँ पर जब दूल्हे को सजाना है, मौल तो चाहिए, मुकुट तो चाहिए, लता मंडप में लक्ष्मण जी प्रभु को मौर पहनाने का कार्य करते हैं, इसीलिए आप देखते हैं लता मंडप में ले गए, सुंदर मौर पहनाया। यहाँ पर कहा गया मोर पंख सिर सोहत नीके, कुसुम जहां पर कहते हैं गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, फूलों की कलियों को लेकर के और मोर पंख को लेकर के ऐसा सुंदर सजा दिया मानो वह मुकुट के समान हो। और जब प्रभु दूल्हे के समान सज गए तो लक्ष्मण जी कहते हैं अब चलिए, दुल्हन वहां पर है, आप बाहर निकलिए। और सीता जी मानो उनके मन में तो थोड़ा क्षोभ है कि मालूम नहीं कैसा क्या होगा, मन तो चला गया श्री राम के पास उनका भी, और जिस समय प्रभु निकलते हैं सीता जी के मन में वह मानो चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, क्या करें, विधाता क्या करेगा, पिताजी ने तो वह स्वयंवर रच दिया है, पर मन तो यहाँ चला गया है। और जब निकले क्या देखती हैं सीता जी, मोर पंख लगा करके, मानो लक्ष्मण जी ने कह दिया अभी तक जो विरागी ब्रह्म था वह अनुरागी हो गया है, अभी जब तो ब्रह्म निष्पक्ष था वह पक्षधर हो गया है, इसलिए मानो सीता जी को यह संकेत देते हैं चिंता न कीजिए, अब ब्रह्म निष्पक्ष जो था वह पक्षधर बन गया है, पक्षधर बनाने का काम यह लक्ष्मण जी करते हैं। तो श्रृंगार रस में भी साथी, सभी रस में भी साथी, और जहां पर शौर्य का रस हो, वीर रस हो, वहां पर भी साथी। आप देखते हैं वीर रस में कैसे साथी, उस दिन तो कुछ नहीं बोले, प्रभु ने कितनी बातें कही, श्रृंगार रस का वर्णन किया, चुपचाप रहे। और दूसरे दिन सुबह प्रभु पूछते हैं, वह अरुण लक्ष्मण, क्या अरुण उग गया, सूरज उग गया, सूरज उग आया? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तब कवित्व फूटता है, तब लक्ष्मण जी का कवित्व फूटता है। वहां पर जो वर्णन करते हैं, अरुणय अरुणोदय सकुचे नखत उरुगन ज्योति मलिन, ये सब महाराज ठीक है। एक सूर्य तो उग आया है और कुछ देर बाद एक दूसरा सूर्य उगेगा, जिसके कारण ये जो राजागण हैं, जो चंद्रमा नक्षत्र तारों के समान हैं, वे भी मलिन हो जाएंगे। एक सूर्य उग आया है और रात्रि में जितने ये सब चमक रहे थे, उनकी ज्योति मलिन हो गई है। तो महाराज एक दूसरा अंधकार थोड़ी देर के बाद आपकी भुजा रूपी सूर्य के द्वारा हटने वाला है, आप उस धनुष को तोड़ने वाले हैं, और जितने ये राजा आए हैं वे तो सब नखत के समान, नक्षत्र के समान है, तारों के समान है। क्या मतलब? कहते हैं प्रभु हंसकर के, लक्ष्मण तुम तो ज्योतिषी ही बन गए, तुम तो कह रहे हो कि धनुष मेरे द्वारा टूटेगा। अरे कितने बड़े बड़े राजा, महारथी, सूरमा यहाँ पर आए हैं, हो सकता है पहले मुझसे उठ करके वे जाए और धनुष को तोड़ दे। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज वे धनुष को तोड़ने नहीं आए हैं, इसीलिए उनके द्वारा धनुष नहीं टूटेगा। क्यों ऐसी बात कहे, क्यों कहते हो महाराज? वह तो धनुष को तोड़ने की बाध्यता है, वे तो सीता जी को पाने आए हैं, वे धनुष को तोड़ने नहीं आए हैं। कितनी सार्थक बात है, रात में कितने प्रकाशधर होते हैं, पर क्या रात्रि का अंधकार दूर होता है? नक्षत्र हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं, कितने सब आकर के जगमगाने लगते हैं, पर क्या रात्रि का अंधकार दूर होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे उस अंधकार को दूर करना नहीं चाहते। कोई कहे तारों से, क्यों भाई तुम तो लाखों करोड़ों की संख्या में चमकते हो और यह रात्रि का अंधकार दूर नहीं हो रहा है, और दिन के समय केवल एक सूरज ही सारे अंधकार को दूर कर देता है, यह कैसी विचित्र बात है? तुम कोटि कोटि होकर के, तो कहेंगे वे, अरे रात्रि का अंधकार यदि दूर हम कर दें तो हमारी चमक दिखेगी कैसे, हम चमकेंगे कैसे? तो ये चमक दिखाने आए हैं महाराज, ये अंधकार को दूर करने नहीं आए हैं। जैसे बहुत सार्थक उपमा दी गई, ये जो खद्योत है, निशि तम तह खद्योत प्रकाश था, जहां पर कहा गया है ये कैसे है, खद्योत जनु दम्भिन कर दुरा समा जुरा समाजा, ये मानो दम्भी है, जैसे रात में जुगनू चमकते हैं, रात में ही जुगनू चमकते हैं, दिन में तो चमकते नहीं, रात में लाखों करोड़ों जुगनू आ जाए चमकते हैं, वे क्या अंधकार को दूर करने आते? नहीं आते। अंधकार दूर हो जाने से उनका अस्तित्व नहीं दिखेगा, वे तो केवल अपने अस्तित्व को चमकाने आते हैं, रात बनी रहे। तो महाराज संसार में इसी प्रकार लोग हैं, वे अंधकार को दूर करना नहीं चाहते, वे तो चाहते हैं कि बस अंधकार बना रहे जिससे हम चमकते रहें। एकमात्र अंधकार को दूर करने की इच्छा करने वाले आप हैं, और इसीलिए यह जो चाप तम भारी, ये जो धनुष घोर अंधकार का प्रतीक है, उसको आप ही तोड़ेंगे, ये राजागण नहीं तोड़ेंगे। वीर रस का संचार, वीर रस का संचार प्रभु के भीतर में करते हैं, और हम देखते हैं कि धनुष प्रभु के द्वारा टूटता है। तो इस प्रकार ये जो लक्ष्मण जी हैं, हर प्रकार से प्रभु की हर लीला में सहायक हैं, जहां जैसा चाहिए वहां वैसा बन जाते हैं, और प्रभु को कोई संकोच नहीं होता। यदि कोई अपने सबसे अधिक अपने हैं तो लक्ष्मण जी हैं, कहीं कोई संकोच नहीं है, किसी प्रकार का संकोच नहीं है लक्ष्मण जी। जहां बैठे, जहां खड़े रहें, जैसे रहें, प्रभु को ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल बिल्कुल उनके प्राण ही हैं। तभी तो हम देखते हैं कि कह दिया, पहली बार हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी को पहले प्रभु नहीं पहचान पाए, तो हनुमान जी ने थोड़ा सा दुख भी व्यक्त किया। तो सुनु कपि जनि मानस जिय ऊना, तैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ऐसी बात कह दी पहली ही भेंट में कि देखो कपि, तुम अपने मन में किसी प्रकार दुख मत लाओ, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। ये क्या विचित्र बात है, लक्ष्मण जी जन्म से साथी, जन्म से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी अभी आए हैं और अभी कह दिया कि तुम मुझे लक्ष्मण जी से दुगने प्रिय हो। अरे इतना ही कह देते कि तुम मुझे लक्ष्मण जी के समान प्रिय हो तो भी बात समझ में आती, और कह देते तुम लक्ष्मण जी से मुझे दुगुने प्रिय हो। क्या मतलब है? हनुमान जी से बाद में प्रभु ने पूछा था, अच्छा हनुमान मैंने जब ऐसा कहा तो तुम्हें कैसा लगा?